वी द पीपल, हम भारत के लोग। लगातार जो लोग हैं जिनको ये पता है कि हम बिना एक साथ आए, बिना इकट्ठे हुए अपने अधिकारों को नहीं बचा सकते हैं, वो लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं सुबह शाम 24 घंटे, बिना ये सोचे कि उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है या उनके अपने संगठन की आइडेंटिटी क्या है या उनका कोई ईगो या अहम भी है। क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम सब इकट्ठे नहीं हुए तो हम बाबा साहब का जो संविधान और जो संविधान में अधिकार हैं आम आदमी के, मूल निवासियों के, भारतवासियों के, बहुजनों के, या जो बुद्ध के समय के समण समाज थे, उनके अधिकारों को हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। हालांकि अब वो बचे नहीं हैं, मगर एक उम्मीद है कि अगर अभी भी हम सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए तो हम इन सबको बचा भी लेंगे और बढ़ा भी लेंगे। यही सोचकर सभी लोग वर्चुअल मीटिंग्स में, क्योंकि कोरोना के समय फिजिकल मीटिंग तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा इस समय 2021 में मई के महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही हैं, लगभग 6,64,359 गाँव और लाखों जो शहर और कस्बे हैं उनमें कोरोना फैल चुका है और काफ़ी लोगों के मरने की सूचनाएं आ रही हैं। मगर जो बीमारी है उससे बड़ी बीमारी है कि जो बहुजन या एससी एसटी या ओबीसी या समण समाज या जो आदिवासी समाज जो भी आता है, उस समाज के जो अधिकार हैं अगर वो सुरक्षित नहीं रहे तो महामारी के बाद भी या महामारी के समय भी उनको खाना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार का साधन रहेगा नहीं। शिक्षा जिन लोगों ने ली है, एजुकेशन जिन लोगों ने ली है, उसके हिसाब से उनको काम मिलेगा नहीं, पैसा उनके पास आएगा नहीं, ज़मीन उनके पास है नहीं, इंडस्ट्री उनके पास है नहीं। जो सरकारी नौकरियों का एक रुझान था, क्योंकि सरकारी सेक्टर सारे एक एक करके बेचे जा रहे हैं तो उसमें नौकरी की कोई उम्मीद है नहीं। ये सारी चीज़ें आप लगातार देख रहे हैं और सभी महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो मीटिंग होती हैं उन मीटिंग में सवाल जवाब होते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अधिकतर लोग जो इस चिंता में हैं उनका जो विजन है या सोच है वो वैसी ही है जैसी 70 साल से या 70 साल के आसपास से जिस तरह से संगठन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें से एक जनरल सेक्रेटरी बनेगा, एक प्रधान बनेगा, एक आध दो चार वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, कुछ संगठन सचिव, कुछ संगठन मंत्री, एक आध फाइनेंस का मिनिस्टर बन जाएगा, सेक्रेटरी बन जाएगा, सचिव बन जाएगा, और वो फिर कहेंगे कि आप अपनी अलग अलग जिलों में या अपने अपने क्षेत्रों में या अपने अपने शहरों में बॉडी बनाइए और फिर हम संघर्ष करेंगे। दरअसल जितने भी संगठन अब तक बने हैं जिन्होंने बाबा साहब की पीठ में छुरा घोंपा है या बाबा साहब के संगठित रहो नारों को तोड़ा है और ख़राब किया है, उन्होंने यही प्रक्रिया अपनाई है। और फिर वो प्रक्रिया अपनाने के बाद में उसमें वो स्वयं शंभू बन जाते हैं, उनको एक आनंद सा आने लगता है अपनी पोस्ट का, अपनी पोषण का। काम उनका फैलता नहीं है क्योंकि काम फैलेगा भी नहीं। काम ना फैलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर पूरे समाज में 1,000 एक्टिव लोग हैं, 1,000 ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और वो 1,000 के 1,000 लोगों ने 1,000 तरह के संगठन ही बना दिए हैं, तो एक संगठन में एक व्यक्ति सिर्फ सोचने वाला और काम करने वाला हिस्से में आता है परसेंटेज के हिसाब से। और संगठन में जब तक 1,000 लोग नहीं आएंगे एक जैसे सोचने वाले, या एक ही संगठन नहीं होगा, तब तक हर तरह के लोग उसमें जुड़ेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं। तो जब समाज में लोग ही गिने चुने हैं और वो गिने चुने लोग भी अलग अलग रहेंगे, तो कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति ये कहता रहे कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं या हम ऐसा कर देंगे या हम वैसा कर देंगे, या बहुत ज़्यादा झूठ बोलेगा तो कहेगा कि जब हमारी सत्ता आएगी, जब हम सत्ता में आएंगे, जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी, या कहेंगे कि हम इतनी पावरफुल हो जाएं कि सरकार हमारी बात मान ले, सारे आश्वासन झूठे हैं। नेता जानते हैं कि ये पूरे होने वाले नहीं हैं, मगर वो अपने कार्यकर्ता को या जो उनके नीचे उनका भक्त है या गुलाम है या अनुयायी भी कह सकते हैं, बेवकूफ अनुयायी, उसको नहीं बताते ये बात। और सारे नेता उसको नहीं बताते कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सबका इकट्ठा होना जरूरी है, मगर उनके अंदर एक लालसा मन में होती है, एक लालच मन में होता है कि सारे इकट्ठे तो हो जाएं, मगर मेरे नीचे ही हो जाएं, मैं ही इनका बॉस रहूं, मैं ही इनका सुप्रीम रहूं, मैं ही इनका कमांडर रहूं, मैं ही इनका नेता रहूं, मैं ही इनका अध्यक्ष रहूं, मैं ही इनका प्रधान रहूं, और ये सारी मेरी बात माने तो बात बनेगी, और अगर मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं तो अलग ही रहूंगा, मर जाऊंगा मगर मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति जिससे भी आप बात करेंगे वो कहेगा कि हाँ संगठित होना चाहिए, सबको साथ होना चाहिए, मगर पहली शर्त वो रखेगा कि अच्छा इसको कैसे करोगे, मतलब संगठित कैसे होगे। उसका कहने का मतलब ये था कि व्यवस्था क्या है और इस व्यवस्था में मेरा एडजस्टमेंट क्या है, मुझे क्या बनाओगे, यानी मैं क्या रहूँगा इसमें, क्या मुझे प्रधान मानोगे, क्या मुझे जनरल सेक्रेटरी मानोगे, क्या मानोगे, और अगर तुम मुझे राष्ट्रीय लेवल का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं मानते हो तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। वो कहेगा नहीं मगर साथ नहीं आएगा। कुछ लोग सीधे सीधे नहीं आएंगे, कुछ लोग मीठी मीठी चिकनी चुपनी बातें करेंगे, कहेंगे अरे कैसे करना है इसको, कैसे करना है, अरे बहुत बढ़िया है ये तो काम, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं सबको साथ लाने का, ये बहुत बढ़िया काम है, करिए इसको, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे होगा ये, इसकी करने की प्रक्रिया क्या है, ऐसा कह के चुप हो जाएंगे। एक सवाल आया था, हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं जूम के अंदर, तो एक साथी ने जो कहीं किसी संगठन में काम करते हैं उन्होंने कहा कि इसको कैसे करेंगे, नेता कैसे इकट्ठे होंगे। तो हमने उनसे कहा कि अगर किसी संगठन का नेता इतना भी नहीं जानता कि उसको इकट्ठा कैसे होना है, उसको कैसे एक साथ लोगों को लेके आना है, पूरे भारत के नेताओं से कैसे बात करनी है, तो उसको नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए, संगठन की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो अभी कुछ जानता नहीं है। जितने भी ये नेता हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे धार्मिक हैं, चाहे राजनीतिक हैं, चाहे सरकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे कोई दल बल सेना संगठन, कोई ब्रिगेडियर, कोई पैंथर, कोई पार्टी, कोई इस तरह के हैं, इन सभी नेताओं ने कोई पैदाइशी एक साथ ही पैदा होते नेता नहीं बन गए हैं। इनका संघर्ष है, किसी का 2 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 10 साल का, 20 साल का, और ये लगभग सबको जानते हैं क्योंकि ये टूट टूट के वहीं से आए हुए हैं। जैसे एक संगठन 1978 में एक संगठन बनाया, उस संगठन के 2 टुकड़े हुए, फिर उसके 4 हुए, उसके 6 हुए, तो ये जितने नेता हैं जो अपने आप को नेता कहते हैं, इनका एक दूसरे से घर तक का भी परिचय है, यानी कि ये उनके परिवार के बच्चों तक को भी जानते हैं, उनके परिवार के शादी ब्याह बर्थडे में आते जाते भी रहते हैं। इसलिए कोई नौजवान अगर ये समझता है कि ये नेता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं या एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ये बात नहीं करते हैं, तो वो नौजवान अभी जानता नहीं है, उसे 2 साल 5 साल हुए हैं। ये जो 60 साल के, 50 साल के, 55 साल के, 70 साल के जो लीडर हैं, नेता हैं, ये सब एक दूसरे को जानते हैं, नाम से जानते हैं, परिवार से जानते हैं, परिचित हैं एक दूसरे के घर से, तो इनको मिलने में आपत्ति क्या है। जेब से मोबाइल निकालना है, नंबर इनके पास सब हैं, नहीं नंबर पब्लिश होते रहते हैं, और फ़ोन करना है, हाँ भाई फलाने क्या हाल है, क्या नहीं है, मुसीबत आई है, आपातकाल आया है, बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है, हमारी नेतागिरी तो अब ख़त्म होने वाली है क्योंकि हमारी उम्र पक्की हो गई है, इन बच्चों का भविष्य बच जाए तो हम सबको अब एक होना चाहिए, और मैं बिना शर्त के अब आपके साथ हूँ। सामने वाला भी कह दे कि मैं भी भाई साहब बिना शर्त के आपके साथ हूँ, दोनों का मेल हो जाए, हो गया। इसमें कौन सा एफिडेविट बनना है, या कोई बहुत बड़ी कन्वेंशन होनी है, या कोई बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट होना है, अरे जितनी बेशर्मी से टूटे थे, थोड़ी सी शर्म से जुड़ जाओ। जब तुमको टूटने में, अलग होने में शर्म नहीं आई, तो जुड़ना तो अच्छा काम है, इसमें काहे की शर्म है। मतलब गलत काम के लिए तो तुम्हें शर्म नहीं आई, बेशर्मी से तुमने संगठन तोड़ दिया, तुम अलग हो गए, और जो अच्छा काम है, जो शर्म वाला काम है, जिसमें तुम्हें वाहवाही मिलेगी, जिसमें लोग कहेंगे कि देखो हमारे नेता कितने अच्छे हैं, उसके लिए, इसके लिए तुम बहाने ढूंढते हो कि हम कैसे करेंगे, कैसे मिलेंगे, अरे तुम्हें कोई हाथ पकड़ के गले मिलवाएगा क्या? ये सामाजिक काम है, तुम अपने लड़की लड़की का रिश्ता नहीं कर रहे हो, जो तुम्हें जहां ये बिचौली की जरूरत पड़ेगी कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सामाजिक काम है। जब तुम्हारे सामाजिक उद्देश्य एक हैं, संगठन एक हैं, बाबा साहब एक हैं, ज्योतिबा फुले एक हैं, जब बुद्ध एक हैं, जब सारी चीज़ें एक हैं, जब सारे मूल्यवासी जितने महापुरुष हैं एक हैं और तुम्हारा उद्देश्य भी एक है, इसमें दिक्कत क्या है? किसका इंतजार कर रहे हो? तो मैंने उनको ये कहा कि नेता की इच्छा अगर होगी तो वो जेब से फ़ोन निकाल के 1 मिनट में मिल लेगा, और अगर इच्छा नहीं होती है तो आप उसको बार बार कहो कि भाई तू अलग अलग रह के कर क्या लेगा, तू कौन सा तीर चला के और कौन सा पहाड़ फोड़ लेगा, तो हमको उसका रूपरेखा बता दे, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। नेता बड़ा निकम्मा और चालाक होता है, वो कह देगा कि देखो मुझे इतना फुल टाइमर चाहिए, मुझे इतने वर्कर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इतना पैसा चाहिए, और हकीकत ये है कि जितना उन्होंने मांगा या चाहा उससे ज़्यादा उनको मिला भी है, मगर वो कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 1,000 आदमी हैं और 1,000 आदमी 1,000 संगठन बना देंगे तो संगठित हुए कहाँ? फिर वो कामयाब होने की स्थिति में नहीं है। तो वो अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ता को हमेशा एक मुगालते में रखते हैं, धोखे में रखते हैं, भ्रम में रखते हैं, इल्यूजन में रखते हैं, उसको झूठ बोलते हैं, उसको गुलाम बनाने के लिए या तो मीठी मीठी भाषा बोलेंगे, सामने वाला जो दूसरा संगठन का आदमी है उसके बारे में खूब उल्टी सीधी बातें उसको दिल में डालेंगे, बहकाएंगे, और जाति का इस्तेमाल करेंगे। यानी जो संगठन का नेता जिस जाति का होगा, वो दूसरे संगठन की अगर कोई दूसरी जाति है, क्योंकि इन संगठन के नेताओं ने अभी तक जाति छोड़ी नहीं है, तो ये जातिवाद पे भी आ जाएंगे। यानी जिस जाति से हम लड़ रहे हैं, जिस जाति से बाबा साहब ने पूरी जिंदगी निकाल दी, जिस जाति को ज्योतिबा फूले ने, जिस जाति को महापुरुषों ने पूरी जिंदगी खत्म किया है, एनिलेट किया है, बीज नाश किया है, ये उसी जाति पे आके और अपने अपने जाति के लोग छांट छांट कर उसमें लेके आते हैं और फिर उनको जातिवाद का पाठ पढ़ा देते हैं। साम दाम दंड भेद छल कपट छह के छह ये अपनाते हैं, क्योंकि ये संगठन के, जैसे कहते हैं ना कि ब्राह्मण बड़ा दुश्मन है, ब्राह्मण हमको तोड़ के रखता है, 6,743 जातियों में ब्राह्मण हमको अलग अलग करके रखता है, ब्राह्मण ने हमको जातियाँ बनाई, ब्राह्मण हमारा दुश्मन है, यही सिखाते हैं ये लोग। मगर ये कभी नहीं कहते कि हम बड़े ब्राह्मण हैं, हम तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, ब्राह्मण से भी बड़े दुश्मन हैं, हमने तुम्हें 10,000 संगठनों में तोड़ा है, हमने तुम्हें मिलने नहीं दिया है, हमने छुपी हुई जाति जाति संगठन में खेली है और जाति जाति पे हम संगठन को तोड़ते चले आ रहे हैं, हम किसी भी हालत में तुमको दूसरे लोगों से नहीं मिलने देते, जैसे जाति में दूसरी जाति की शादी नहीं होने देते, वैसे ही हम इस संगठन से दूसरे संगठन में तुमको नहीं मिलने देते। ये जो नेता हैं ये ब्राह्मणवाद से भी ज़्यादा खतरनाक नेता हैं, ये मर जाएंगे मगर तुम्हारा उद्धार और तुम्हारा वेलफेयर, तुम्हारा लाभ, तुम्हारा कल्याण नहीं होने देंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि कल्याण होने की एक शर्त है कि सारे इकट्ठे हो जाएं, अगर ये इकट्ठे नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़े दुश्मन और नंबर एक के दुश्मन हैं। दरअसल ब्राह्मण से हमें दुश्मनी नहीं है, क्योंकि वो हमें मिलने से या इकट्ठे होने से नहीं रोकता है, उसका जातिवाद चलता है, मगर उस जातिवाद को ही अगर हमारे लोग इस्तेमाल करें और फिर हमें तोड़ें तो वो ब्राह्मण से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इस बात का आप एनालिसिस कर लीजिए, इस बात को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, इस बात को सोच लीजिए, इस बात का चिंतन कर लीजिए, क्या ये हमें टुकड़ों में नहीं बांट रहे हैं, क्या ये हमें मिलने देते हैं, क्या ये संगठन संगठन नहीं खेल रहे हैं, जैसे जाति जाति ब्राह्मण खेलता है वैसे ही संगठन संगठन नहीं खेल रहे हैं। इतना कहने के बावजूद भी, इतना समझाने के बावजूद भी, इतनी मीटिंग और इतने लोग कह रहे हैं कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ, 10,000 लोग इस बात से मायूस हो गए हैं कि ये संगठन किसी काम के नहीं है। और हकीकत यह है कि इनके संगठन का अगर आपके पास डाटा हो तो वो इंक्रीज नहीं कर रहे, बढ़ नहीं रहे, वो बढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से एनिमी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे को मारते हैं। तो अधिकतर लोग जो समझदार हैं वो तो मायूस होकर बैठ जाते हैं, और जो बेवकूफ़ हैं, भक्त हैं, चेले हैं, वो अभी इनका झंडा उठाए रहते हैं और कभी इनसे नहीं पूछते हमारा कल्याण कैसे होगा, हमें नौकरी कैसे मिलेगी, हमें जोतने के लिए जमीन कैसे मिलेगी, हमें इज्जत कैसे मिलेगी, तुम लोग अलग अलग रह के कैसे हमें संविधान के तहत में हमारा अधिकार दिलवाओगे, क्योंकि कार्यकर्ता भक्त हो चुका है, गुलाम हो चुका है, और गुलाम प्रश्न नहीं करता अपने उससे। इसलिए भारत भर में जितने भी लोग हैं जो पहले काम कर चुके हैं या मायूस हो चुके हैं या जिनको थोड़ी उम्मीद है या जिनको ये बात पसंद आती है, अच्छी लगती है, इस वीडियोस में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं बहुत तेज़ी से। कुछ लोगों ने अपने फ़ोन नंबर देने के लिए हामी भरी है कि आप हमारे फ़ोन पब्लिश कर दीजिए, लोग हमसे बात करेंगे, हम उनसे मिलेंगे तो आपस में हमारा मिलना जुलना बढ़ जाएगा। मैं यहाँ कुछ फ़ोन नंबर आपको दे रहा हूँ, हम लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कोई संगठन वंगठन तो है नहीं, ये तो बस जस्ट ऐसे लोगों का समूह इकट्ठा हो रहा है जो लोग कहते हैं कि हमको सारे ईगो, सारे अहम, सारे भ्रम, सारे घमंड छोड़कर वेलफेयर के लिए बाबा साहब की बात मानते हुए, ज्योतिबा फुले की बात मानते हुए इकट्ठा होना है, एक अच्छे उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना है। और जो हमारे नेता हैं उनको ये कहना है आप इकट्ठे हो जाओ, अगर आप इकट्ठे नहीं होगे तो आप हमारे किसी काम के नहीं हो, हम आपको छोड़ देंगे। बहुत नौजवान हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो लीडरशिप ले लेंगे, वो पेन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लीडर मरते हैं, आते हैं, जाते हैं, कोई आफत नहीं आती दुनिया में, जो आता है मरता है। अगर 150 लीडर बूढ़े होके चले जाएं और जवान लोग उनकी जगह ले लेंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है क्योंकि अनुभव की दिक्कत है, मगर चल जाएंगे क्योंकि युवाओं में बड़ी अक्ल है और सबसे ज़्यादा युवा ही सफ़र करने वाला है। ये बूढ़े लोग 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, इनके काम सारे फिट हैं, और जो संगठन में लोग बैठे हुए हैं उनके सारे काम फिट हैं, उनके बच्चे एडजस्ट हैं, वो खुद एडजस्ट हैं, फिर भी वो लगे पड़े हैं ये सोच कर के हम लोगों का कल्याण करेंगे, मगर वो जानते हैं कि वो लोगों का कल्याण नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग अलग हैं। अलग अलग जैसे झाड़ू होती है, तिनका अलग अलग करके सफाई नहीं होती, वैसे ही अगर सारे लोग अलग अलग रहेंगे तो कोई भी गंदगी साफ नहीं कर सकते, ना ही वो कोई कल्याण कर सकते। तो आपको अगर लगता है कि अपना जो अधिकार है वो बचाना है, आपको लगता है कि आपका नेता ठीक नहीं है, निकम्मा है, इकट्ठा नहीं होता है, आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो सही सोच के और सही तरीके हों, तो आप इनमें से किसी भी फ़ोन नंबर पर फ़ोन करें, अपनी बात करें, उनकी बात सुनें और कोशिश करें कि बाबा साहब ने जो संविधान दिए हैं वो बच जाएं। एक बार अगर मन से कोशिश करेंगे तो 100% बचेंगे, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है और संख्या बल के दम पर आप जीत जाएंगे, बेशक आपके पास में खाने के लिए सूखी रोटी है। धन्यवाद।